इजराइल सामने आके खड़े होंगे, मोमिन तैयारी है या नहीं, उठ तैयार हो, मोहलत मांगेंगे, मोहलत नहीं है। उस वक्त याद करेंगे कि ये 60 साल के बदले में हासिल क्या हुआ, इस 60 साल के बदले में हासिल क्या हुआ। अजीज उमर, वो शख्सियत तो हस्ती जिसने अपनी उम्र का एक लम्हा जाया नहीं किया, वो हस्ती भी अफसोस करती है कि ये सरमाया कम है सफर तुलानी। अमीरुल मोमिनीन का फरमाना है, आह लिकिल्लत ज़ात व तूल सफर व बुअद मसाफा, हाय अफसोस ज़ाद राह बहुत कम है, सफर बहुत तुलानी है, फासला बड़ा ज्यादा तय करना है। वो हस्ती जिसने अपनी उम्र का एक लहजा भी जाया नहीं किया, वो भी उम्र के कम होने पर अफसोस कर रही है कि इतना लंबा सफर, कितना लंबा सफर, खाक से खुदा तक का सफर तय करना है, खाक से खुदा तक का सफर तय करना है। 60 सालों में कम उम्र है, अगर हर लहजा भी इसका इस्तेमाल करूं फिर भी रह जाऊंगा पीछे, लेकिन जो कई कई साल जाया कर दें, फुर्सत शनास बने, फुर्सतों की तलाफी किसी चीज से नहीं होती। उसके बाद वो फुर्सतें जो खुदावन तबारक तआला ने इंसान को दी हैं, ये जवानी एक फुर्सत है, ये जमाना खास, जवानी शबाब ये फुर्सत है, और ये फुर्सत आती है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बादल की तरह आती है जवानी और गुजर जाती है। आज ये बुजुर्ग हमारे तलाश करते हैं कि जवानी किधर गई, पता भी नहीं चला कैसे आई और कैसे गुजर गई। जवानी में ताकत आती है, जवानी में उरूज होता है, जवानी में एनर्जी, हर चीज अपने उरूज पर है, हर चीज, जिस्मानी कुव्वतें और नफसानी कुव्वतें और जहनी कुव्वतें सारी अपने औज पर होती है। क्यों खुदावन तबारक व ताला ने ताकत व कुव्वत की चोटी पे जवान को बिठा दिया? हमारी नजरों में जवानी कल्चरल, हमारा कल्चर कहता है जवानी लापरवाही की उम्र है, गफलत की उम्र है, सोने की उम्र है, घूमने की उम्र है, खेलने की उम्र है, ये हमारी माएं और बाप हमें बताते रहते हैं। जब वालिद कहता है कि ये जवान हो गया है करता कुछ नहीं, माँ कहती है अभी तो बच्चा है, अभी तो इसकी दाढ़ी निकली है, अभी तो इसकी मूछें आई, अभी तो इसने खाया ही कुछ भी नहीं है। जवानी सोने की उम्र, घूमने की उम्र, जबकि दीन से पूछो, कल्चर के नजदीक जवानी लापरवाही की उम्र है, लेकिन दीन क्या कहता है? जवानी तौफीकात की उम्र है, जवानी वो उम्र है कि सारी तौफीकात खुदावन तबारक व तआला इकट्ठी करके यकजा जिस जमाने में इंसान के सामने लाके रख देता है, उस उम्र का नाम है जवानी। फिर उसके बाद एक एक करके लेना शुरू कर देता है, ए जवान ये दी थी तूने इस्तफादा नहीं किया। बाद ऐसे हमारी तरह के जवान हैं, हर चीज कोरी अनटच वापस हो जाती है, अल्लाह ने जो दी थी तूने इस्तफादा नहीं किया। ये फुर्सत है अजीज जमान, नाकामियां इन फुर्सतों को जाया करने का नतीजा है, वो नाकामियां जिनका सबब हम दूसरों को करार देते हैं। आज बहुत सारे लोग नाकाम लोग हैं कि किसी ने जादू कर दिया, किसी जिन ने मुझे नाकाम कर दिया, किसी फला शरीक ने और रकीब ने मुझे नाकाम कर दिया। तवाहुमात में जाकर अपनी नाकामियों के असबाब मत ढूंढो, तवाहुमात में नाकामियों के असबाब नहीं है, फुर्सतें जाया करने में नाकामियां हैं। सबसे बड़ा जिन, सबसे बड़ा भूत जो इंसान की नाकामी का सबब है, वो फुर्सत जाया करना है। जादुओं से कोई नहीं नाकाम करता, खुदा ने ये कायनात बनाकर जादूगरों के इख्तियार में नहीं दे दी, मलाइका पैदा किए, मलाइका कायनात चला रहे हैं, भूत नहीं बनाए खुदा ने, भूत हमारे जहन की मखलूक है, भूत कहीं मौजूद नहीं है। खुदा ने भूतों के हवाले अपनी बशरियत को नहीं कर दिया, अपनी मखलूक को नहीं किया, अंबिया बनाए, आइम्मा बनाए, अली के हवाले किया इस मखलूक को। अली से पूछो मैं किस तरह कामयाब हूं, अमीरुल मोमिनीन बताएंगे कामयाबी के उसूल क्या। फुर्सतों से फायदा उठाओ अजीज मान, हर तरह की फुर्सतें, ये जो इबादतें हैं खुदावन तबारक व तआला ने फुर्सतें करार दी हैं, ये इबादतें फुर्सतें हैं, ये इबादतें तकलीफें नहीं है, ये इबादतें जहमतें नहीं है, ये इबादतें بوجھ نہیں ہے، یہ عبادتیں وبال نہیں ہیں، یہ عبادتیں فرصتیں ہیں، فرصت ہے جو میسر آتی ہے آپ کو. یعنی ہر وقت جب نماز کا وقت آتا ہے، آزان کا مطلب سنو، ذرا آزان کا مطلب سنو، آزان کے کلمے سنو، وہی آزان جس میں ہم نے جھگڑا شروع کر دیا. ہر وہ چیز جو ہماری ہدایت کے لیے آئی تھی ہم نے اس میں جھگڑا شروع کر دیا، ہم نے اس کے دو حصے بنا لیے، آدھا حصہ ایک نے لے لیا، آدھا حصہ دوسرے نے لے لیا. اس نے ڈانگ بنا کے اس کے سر میں مارا، اس نے ڈانگ بنا کر اس کے سر میں مارا. ہم نے دین کے تازیانے بنا کر ایک دوسرے پر برسانے شروع کر دیے. نہ عزیز من، دین تازیانہ نہیں ہے، دین ہدایت کے لیے آیا. ذرا ان آزان پہ غور تو کرو، آزان میں کیا کہہ جا رہا ہے؟ حیا علی خیر العمل، حیا حیا حیا، یعنی آؤ آؤ اے مومن آ، کیوں کہ تیری طرف کچھ آ رہا ہے تو بھی آ، اللہ کی طرف سے کچھ آ رہا ہے تو بھی آ، تو بھی اٹھ. حیا علی الفلاح، تو اٹھ فلاح کی طرف، تو اٹھ خیر عمل کی طرف، تیری طرف فرصت آ رہی ہے، فرصت آ رہی ہے تیری طرف. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آزان کا وقت ہوتا تھا، جو جو نماز کا وقت قریب ہوتا جاتا تھا، رسول اللہ کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، بے چینی بڑھتی جاتی تھی، اور ان آخری لمحات میں سب سے زیادہ بے چینی و اضطراب رسول اللہ کے نفس پر طاری ہوتا و جسم پر طاری ہو جاتا. حتی بعض لوگ مشاہدہ کرتے اور اس وقت حضرت فرماتے، ارحنی یا بلال، اے بلال جلدی کر، آزان دے، مجھے اس اضطراب سے نکال، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں، یہ فرصت جو ملاقات خدا کی مجھے میسر آئی ہے، میں اس کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. ارحنی یا بلال، اس اضطراب سے نکال مجھے اے بلال. آزان کے یہ فرصتیں ہیں عزیز من، یہ صبح کی نماز فرصت ہے، تیرے در پہ آتی ہے اور آ کر رکی رہتی ہے یہ نماز. اگرچہ علی علیہ السلام فرماتے فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں گزر جاتی ہیں، طلوع فجر سے یہ فرصت آ کر تیرے سرحانے رک کے انتظار کر رہی ہے، کب تیری آنکھ کھلتی ہے، کب تو اس کو گلے لگاتا ہے، کب تو اس کے اندر موجود اپنا حصہ دریافت کرتا ہے، کب تو اس کے اندر سے موجود برکتیں و خیر اپنی دریافت کرتا ہے، کب تو اپنی عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے. لیکن کھڑی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے تو آنسو بہا کے وہاں سے گزر جاتا ہے. روایات میں پڑھی کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے، کچھ حسین صورتیں مومن کی قبر میں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ حسین صورتیں قبر میں ظاہر ہوتی ہیں. مومن خود پہچانتا نہیں، پوچھتا ہے تم کون ہو، وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. تو حسین صورتیں، شکلیں، ہم نے جو حور کا تصور سنا ہے، اب میں ایک حور مؤنث، حور مؤنث ہے، اور وہاں کوئی رشتہ، ایک جو ہی حور کا نام آتا ہے اس وقت مومن بے حال ہو جاتا ہے. عزیز من، حور حقیقت ہے، حور حق ہے، قرآن کا وعدہ ہے، حوروں کا تذکرہ قرآن میں، لیکن حور کا معنی کیا ہے، حور کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے حور کا وہ معنی کیا، عورتیں پہلے ہی نکال دی گئیں، بس عورتوں کو تو حور نہیں ملے گی، کیونکہ حور فیمیل ہے، فیمیل کو تو فیمیل نہیں ملے گی. کسی مومن نے مولانا سے پوچھا کہ قدر تو ہمیں حوریں ملیں گی، تو یہ اپنی جو زوجات ہیں یہ کدھر جائیں گی؟ تو مولانا نے، اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو، انہوں نے کہا کہ انہی کو ٹھیک ٹھاک کر کے آپ کو دے دیا جائے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مارے گئے. ہم اس لیے خوش بیٹھے تھے کہ ادھر جان چھوٹ جائے گی ان سے، وہاں بھی یہی نصیب ہو. نہ عزیز من، قرآن مجید کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو مرد اور عورت جو بھی عمل صالح انجام دے، وہ مومن ہو، ہم اسے یکساں حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم اسے یکساں اجر عطا کریں گے. جو اجر میل کو ملے گا وہی فیمیل کو ملے گا، جو عورت کو ملے گا وہ مرد کو ملے گا، جو مرد کو ملے گا وہ عورت کو ملے گا. تو फिर हम सोचते हैं कि ये हूरे औरतों के किस काम आएंगी, ये हूरे औरतों के किस काम आएंगे। अब जरा आओ मासूमीन के मकतब में आकर पढ़ो, अली अलैहि सलाम के मकतब में आकर देखो कि हूर बनेगी कैसे। रिवायात में है कि हूर तुम्हारे आमाल है जो मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आ गए, तुम्हारे आमाल है जो उखरवी दुनिया में ये अमल है, इसी अमल को जब उखरवी रूप लिबास पहनाया जाएगा उसका नाम हूर होगा। वो नूरानी मखलूकात वो तुम्हारे साथ, जिस तरह तुमने जिंदगी जिसके साथ बसर की है आखिरत भी उसी के साथ बसर करोगे, लेकिन रूप बदल जाएंगे। जिस तरह तुम्हारा भी रूप बदल जाएगा, रूप दुनियावी बदल जाएगा, रूप उखरवी हो जाएगा, तुम्हारे आमाल का भी दुनियावी रूप बदल जाएगा, उखरवी रूप हो जाएगा। हमने जन्नत को सिर्फ मर्दों के लिए, मर्द सालारी है ना हमारे यहां, मर्दाना हुकूमत है। अब जब औरतों की आएगी तो वो हूर का माना इस तरह करेंगे कि मर्द महरूम हो जाएंगे उसे ना। अजीज आने वाले, हूर इंसानी आमाल का तजस्सुम है। ये हसीन सूरतें कब्र में आएंगी, मोमिन खुद नहीं पहचानता होगा, ताज्जुब करेगा तुम कौन हो, इतनी नूरानियत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, कहां की मखलूक हो। वो तारुफ कराएंगे, हम मलकूती हैं, तुम कहां से आयो मलकूत से। वो तारुफ कराएंगे, हम तेरा वो अमल है, हम तेरी वो नमाज है जो अव्वल वक्त में तूने अदा किया। सबसे हसीन सूरत अपना तारुफ करवाएगी कि हम वो हसीन, हम वो अव्वल वक्त की तेरी इबादत है जो तूने अंजाम दी। ताज्जुब करेगा, ये मेरी नमाज है। जी ये तेरी नमाज है। कयामत में जो कुछ मिलेगा तेरा अपना बनाया हुआ मिलेगा, किसी और का बनाया हुआ तुझे नहीं, अपना बनाया हुआ मिलेगा। अब दुनिया मजरातुल आखिरा, यहां से सब साथ लेकर जाना। ये इबादतें फुर्सत है अजीजमन, ये दुआ के लहजे फुर्सत है, इनको जाया ना करो। दुआ सिर्फ मांगना नहीं है, दुआ खुदा के साथ राबता है, अपने परवरदिगार के साथ राबता है। जरूरी नहीं कि इंसान मांगे ही खुदा से, बल्कि खुदावन तबारक व तआला का ये फरमाना है, ए रसूल ये सब मेरा नाम भी लेते हैं, तेरे पास भी आते हैं, लेकिन हमेशा अपनी जरूरतों के लिए आते हैं। लेकिन ए रसूल कभी इक्का दुक्का इनमें से कोई ऐसा भी आएगा जो जरूरतों के लिए नहीं फकत मेरे लिए तेरे पास आएगा। जब मेरे लिए आए तेरे पास तो उसे बता देना मैं दूर नहीं, मैं करीब हूं तेरे। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दा दानी। जब मेरा बंदा आए, मेरा बंदा अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा कि हम किस नाम से आपको पुकारें, जो नाम आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। हजरत ने फरमाया मुझे अब्दुल्ला का हो सबसे ज्यादा पसंद है, अब्दुल्ला सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा है। तो बंदे हैं सारे, लेकिन कुछ अल्लाह की नेमतों के बंदे हैं, कुछ अल्लाह के बंदे हैं, कुछ रिज़्क के बंदे हैं, कुछ शफा के बंदे हैं, कुछ हुरों के बंदे हैं, कुछ जन्नत के बंदे हैं, कुछ और नेमतों के बंदे हैं, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे हैं। और उन अल्लाह के बंदों में से एक बंदा खुदा ये कहता है कि ऐ परवरदिगार, मा अबदतुका शौकन लिजन्नतिक वमा अबदतुका खौफन लिनारिक बल वजदतुका अहलन लिइबादतिक फअबदतुका। ऐ परवरदिगार, मैं तेरी जन्नत की खातिर तुझे सजदे नहीं करता, तेरी जहन्नम से डर के तुझे सजदे नहीं करता, तेरी जात लायक इबादत है तुझे सजदे करता हूं। तेरी खातिर अली तेरा बंदा है, तेरी जन्नत तो तेरी जहन्नम का बंदा नहीं, तेरा बंदा है। उसके दिल में खौफ भी है तो तेरा है उसके दिल। अली फरमाते हैं हबली सबर तो अला हर नारे, परवरदिगार हर चीज पर सब्र हो सकता है लेकिन तुझसे दूरी पर सब्र नहीं हो सकता, तुझसे महरूमी पर सब्र नहीं हो सकता। ये इबादतों के लहजे अजीजा ने मान, ये फुर्सतें हैं, वक्त नहीं, जिन्नियत में। सुभान अल्लाह।